ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र। आरंभ में मुख्य समाचार शीर्षक। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के स्वास्थ्य में क्रमिक सुधार। त्रिवी शिक्षण अस्पताल ने कहा एक हफ्ते में ही प्रधानमंत्री होंगे डिस्चार्ज। रेडियो नेपाल के प्रसारण को देश के सभी 77 जिलों में प्रभावकारी बनाने का संचार मंत्री डॉ युवराज खतिवड़ा का निर्देश। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक समारोह के बीच हुए बंदूकधारी के हमले में 30 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा मैं जल्द ही अपने नियमित कामों पर आ जाऊंगा। बुधवार को त्रिवी शिक्षण अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण के बाद से चिकित्सकों की देखभाल में रहे प्रधानमंत्री ओली ने आज अपने प्रमुख राजनीतिक सलाहकार विष्णु प्रसाद रिमाल को टेलीफोन करके बताया कि उनकी सेहत में क्रमिक रूप से सुधार हो रहा है। त्रिवी शिक्षण अस्पताल के कार्यकारी निदेशक प्रेम कृष्ण खड़गा ने बताया कि प्रधानमंत्री ओली ने चलना फिरना और ठोस आहार लेना शुरू कर दिया है और एक हफ्ते में ही वे अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल ने त्रिवी शिक्षण अस्पताल पहुंचकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इससे पूर्व प्रधानमंत्री ओली को स्वास्थ्य लाभ की शुभकामना देने के लिए नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, वरिष्ठ नेता चरणनाथ कनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ, महासचिव विष्णु पौडेल समेत मंत्री सांसद लगायत अस्पताल पहुंचे थे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर भंसार नाकों के अलावा 32 स्थानों में स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गई है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव के बारे में सांसदों की जिज्ञासा पर मंत्री ढकाल ने बताया कि भारत से दवा का आयात न रोके जाने की प्रतिबद्धता भारत ने जताई है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसदों ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए एकीकृत कार्य संचालन करने और एक्शन प्लान बनाकर सार्वजनिक करने और उसे क्रियान्वित करने का सरकार से आग्रह किया। प्रतिनिधि सभा की बैठक में कोरोना के जोखिम न्यूनीकरण के लिए हो रही पहल लगायत विषयों में प्रस्तुत सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव पर विमर्श के दौरान सांसदों ने ऐसा आग्रह किया। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने विभिन्न 4 विधेयकों को दफावार बहस के लिए संबंधित समितियों में भेजा। बैठक में प्रधानमंत्री की ओर से कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री शिवमाया तुम्बा हम्फे द्वारा प्रस्तुत संघ प्रदेश और स्थानीय तह अंतर संबंध व्यवस्थापन विधेयक 2076 को संबंधित समिति में भेजा गया। साथ ही अर्थ एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉ युवराज खतिवड़ा द्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076, नेपाल राष्ट्र बैंक तीसरा संशोधन विधेयक 2076 और उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट द्वारा प्रस्तुत औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान पहला संशोधन विधेयक 2076 को सर्वसम्मति से संबंधित समितियों में भेजा गया। 110वें अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक महिला दिवस के संदर्भ में प्रतिनिधि सभा की राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति ने पत्रकार महिलाओं के साथ विचार विमर्श किया है। समिति द्वारा आज आयोजित विचार विमर्श कार्यक्रम में सभापति शशि श्रेष्ठ ने कहा कि नेपाल में महिलाओं के लिए प्रगतिशील कानून बनने के बाद भी अब तक व्यवहार में लागू नहीं हुआ है। महिलाओं का नेतृत्व स्थापित करने के लिए उनमें एकता होने को जरूरी बताते हुए सभापति श्रेष्ठ ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक महिला दिवस को महिलाओं की एकता, संघर्ष और मुक्ति के दिन के रूप में मनाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि संवैधानिक रूप से महिलाओं को जो भी उपलब्धियां मिली हैं उनका क्रियान्वयन होना चाहिए। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर व्यावसायिक विश्राम।
14-15
बजारमा नयाँ कि छैन। नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवाका अफरहरू सस्तो, साह्रै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा *14-15 ह्यास डायल गर्नु पर्ने रहेछ, त्यही भएर कण्ठ पारिरख्या
हो र दाई।
त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *14-15 ह्यास डायल गर्नु पर्ने रहेछ नि त।
14-15
मलाई पनि कण्ठै भयो दाई।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉ युवराज खतिवड़ा ने रेडियो नेपाल के प्रसारण की देश के 77 जिलों में सहज पहुंच बनाने का निर्देश किया। अर्थमन्त्री भई रहे संचार मन्त्री डाक्टर खतिवडा ने आज सिंहदरबार स्थित रेडियो नेपालकै केन्द्रीय कार्यालयका निरीक्षण गर्नेकै दौरान प्रसारणका नियमित अनुगमन कर समयके मुताबिक परिमार्जन करते हुए देशकै कोने कोने तक रेडियो नेपालकी आवाजको प्रभावकारी बनानेका निर्देश किया। ये साफ करते हुए कि नेपाल में कोरोना वायरस का संक्रमण अभी बिल्कुल नहीं है, मन्त्री खतिवडा ने सभी से सावधानी अपनाने का आग्रह भी किया। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉ युवराज खतिवड़ा ने बताया कि संसद में विचाराधीन रहे संचार संबंधी विधेयकों में आवश्यकता अनुसार ही संशोधन किया जाएगा। नेपाल पत्रकार महासंघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज सिंहदरबार में की गई मुलाकात में मंत्री खतिवड़ा ने कहा कि सरोकार वाले सभी पक्षों के साथ आवश्यक विचार विमर्श करने के बाद विधेयकों का संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है। साथ ही उन्होंने साफ किया कि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से सरकार नए कानून बनाने जा रही है, न कि इस पर अंकुश लगाने के लिए। कार्यक्रम में नेपाल पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष गोविंद आचार्य ने प्रेस से प्रत्यक्ष सरोकार रखने वाली संचार तथा मंत्रालय अंतर्गत के निकायों की पुनः संरचना करने, प्रेस पास, लोक कल्याणकारी विज्ञापन सहित अन्य सुविधाएं प्रदेश और स्थानीय सरकार के द्वारा दिए जाने की व्यवस्था करने की मांग की। कार्यक्रम में महासंघ ने मंत्री खतिवड़ा समक्ष प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने, राष्ट्रीय आम संचार नीति 2073 का क्रियान्वयन करने, श्रमजीवी पत्रकारों के न्यूनतम पारिश्रमिक में वृद्धि करने, श्रमजीवी पत्रकारों को बीमा आदि सुविधा मुहैया कराने लगात मांगों के साथ 10 सूत्रीय ध्यानाकर्षण पत्र सौंपा। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा अर्याल ने कहा कि जब तक तीनों तहों की सरकारों के बीच समन्वयात्मक संबंध नहीं बनेगा तब तक विकास संभव नहीं है। आज स्यांगजा में पुनः नापी का शुभारंभ करते हुए मंत्री अर्याल ने कहा कि विकास का मापन पूंजी निर्माण के आधार पर होता है, इसलिए आने वाले दिनों में विकास, उत्पादन और रोजगारी के नए अवसर प्राप्त होने चाहिए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप ही काम कर रही है। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि आगामी चैत्र 6 गति को तय की गई एसईई परीक्षा की निर्धारित तिथि में ही होगी। मंत्रालय के प्रवक्ता दीपक शर्मा ने आज बयान जारी करते हुए बताया कि कक्षा 1 से 9 तक की वार्षिक परीक्षा को चैत्र 5 गति तक संपन्न करने और एसईई परीक्षा यथावत रूप में संचालन करने का निर्देश किया गया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण नेपाल में हो सकने वाली आपूर्तिजन्य समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार पूरी तरह सचेत है। आज उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण नेपाल में अत्यावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में समस्या न आने देने के लिए दैनिक अनुगमन की जा रही है और कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आयोजित एक समारोह में एक बंदूकधारी के हमले में 30 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय एक नेता के स्मृति सभा के दौरान यह हमला किया गया था, हालांकि मौके पर मौजूद अफगान के उच्च नेता अब्दुल्लाह सकुशल हैं। विद्रोही तालिबान और अमेरिका के बीच होने जा रहे शांति समझौते से पूर्व हुए इस आक्रमण को गंभीरतापूर्वक लिया गया है। तालिबान ने इस घटना में अपनी किसी भी तरह की संलग्नता होने से इनकार किया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के स्वास्थ्य में क्रमिक सुधार, त्रिवी शिक्षण अस्पताल ने कहा एक हफ्ते में ही प्रधानमंत्री होंगे डिस्चार्ज। रेडियो नेपाल के प्रसारण को देश के सभी 77 जिलों में प्रभावकारी बनाने का संचार मंत्री डॉ युवराज खतिवड़ा का निर्देश। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक समारोह के बीच हुए बंदूकधारी के हमले में 30 लोगों की मौत। इसी के साथ हिंदी समाचार से मुझे अनुमति दीजिए, सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभरात्रि।